मेरे अजीज दोस्तों नमस्कार। आज 7 अगस्त 2019 है और आज के इस afis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं और आप सबके साथ ही विशेष रूप से स्वागत करता हूं अपने उन 4 नौजवान साथियों का जिन्होंने एकेडमी की 10 से 24 अक्टूबर के बीच होने वाली क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन नौजवान साथियों के नाम हैं बैजनाथ प्रसाद साहू, आपका गांव है खुखरा, जिला रांची झारखंड से। सुमन कुमारी, आपका गांव है ओरगाई, जिला भभुआ बिहार से। पंकज सेन, आपका गांव है तुलसी नेवरा, जिला रायपुर छत्तीसगढ़ से। और ललिता गंगवार, आपका गांव है फरीदपुर, जिला बरेली उत्तर प्रदेश से। फ्रेंड्स, आज के मुख्य विषय के अंतर्गत में चीन की मुद्रा ने जो अपने यहां अवमूल्यन किया है इस पर बातें करूंगा, लेकिन आइए पहले दूसरी खबरों को देख लेते हैं। जो 370 अनुच्छेद जो समाप्त किया गया है, 35A जो समाप्त किया गया है, जिस तरह से जम्मू कश्मीर और लद्दाख का पुनर्गठन करके केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए हैं, इन पर आपको अब ढेर सारे लेख मित्रों पढ़ने को मिलेंगे। उनको दोहराने का मैं कुछ विशेष अर्थ नहीं समझता, लेकिन उनकी जो महत्वपूर्ण बातें हैं सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की दृष्टि से, डेफिनेटली वो बातें आपके ध्यान में लाना चाहूंगा। पहली बात तो आप देखिए कि जो राज्यों का जो पुनर्गठन हुआ है, यानी कि जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन हो गया ये कहना चाहिए, इस पुनर्गठन के क्या इम्पैक्ट होंगे और खासकर आतंकवादी गतिविधियों की दृष्टि से, या यूं कह लीजिए कि भारत के रणनीतिक महत्व की दृष्टि से, मुझे लगता है कि सिविल सर्विस के एग्जामिनेशन को ध्यान में रखते हुए इस टॉपिक पर अच्छे से तैयारी की जानी चाहिए। या यूं कह लीजिए कि अभी जो ये स्थितियां बनाई गई हैं, एक तो 370 को समाप्त कर दिया गया, पहली बात, 35A को समाप्त कर दिया गया दूसरी बात, और तीसरी बात जो हुई है वो राज्य का पुनर्गठन कर दिया गया। आप जान देख रहे हैं कि लद्दाख की सीमा आप देखिए तो लद्दाख उत्तर पूर्वी सीमा में है, राइट। और फिर हम जम्मू कश्मीर को देखते हैं, जम्मू कश्मीर, तो जम्मू कश्मीर भी अब केंद्र शासित प्रदेश हो गया है और नो डाउट कि वहां विधानसभा होगी। वो कहां है? वो है उत्तर पश्चिम सीमा पर। ये सीमाओं को ध्यान में रखना आपको बहुत जरूरी है, तभी आप इस पर बहुत अच्छे तरीके से सोच पाएंगे और लिख भी पाएंगे। तो जब आप उत्तर पश्चिम सीमा की बात करते हैं तो भारत के साथ नो डाउट कि पाकिस्तान की सीमा तो लगती ही लगती है, लेकिन और एक कौन सा देश है जिसकी सीमा स्पर्श करती है हमारे देश को? वह है अफगानिस्तान। आप याद कीजिए कि कुछ दिनों पहले मैंने आपसे इस बात पर चर्चा की थी कि किस तरीके से अब अमेरिका चाह रहा है कि अफगानिस्तान में जो उसकी फौजें हैं वह वापस ले आए, ठीक है, अफगानिस्तान से वो अपनी फौजें वापस लाए। इसके लिए बहुत जरूरी है कि उसे पाकिस्तान का समर्थन मिले, इसीलिए अभी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान साहब अमेरिका गए भी थे। तो अब आप देखिए कि होगा क्या कि जो अफगानिस्तान है वहां बेसिकली यूं कह लीजिए कि वहां तालिबान का बहुत ज्यादा प्रभुत्व है, तालिबान जो एक तरह से आतंकवादी संगठन ही है तालिबान। अब आप सोच करके देखिए कि अगर अमेरिका वहां से निकल जाता है तो तालिबान का प्रभाव बढ़ जाएगा, और तालिबान का प्रभाव बढ़ जाएगा तो पाकिस्तान के साथ उसके बहुत बेहतर संबंध है, मतलब, और पाकिस्तान और फिर अफगानिस्तान ये दोनों हमारे उत्तर पश्चिमी सीमा पर हैं। तो आपको नहीं लगता है कि भारत की जो आतंकवादी स्थिति, या चलिए हम आतंकवादी स्थिति को छोड़ें, यानी जो हमारी सुरक्षा व्यवस्था है उसको एक नई चुनौती मिल जाएगी, उसके सामने एक नई चुनौती बस पेश हो जाएगी। तो भारत ने अब ये जो कदम उठाया है उससे अब वो इंश्योर हो गया है कि ठीक है अब हम देख लें, क्योंकि अब सीधे सीधे वो केंद्र सरकार के हाथ में आ गई चीज, अदरवाइज क्या था कि बीच में राज्य सरकार थी। ठीक इसी तरह से आप लद्दाख को भी देखने की कोशिश कीजिए, जो लद्दाख है हमारे देश की उत्तर पूर्वी सीमा पर है, और जब हम उत्तर पूर्वी सीमा की बात करते हैं तो देखिए वहां सीधे सीधे फिर चीन आता है, और जो अक्साई चीन का क्षेत्र है, जो कश्मीर की हमारी 4 घाटियां हैं जिसमें एक है सक्सगम, रसकम, शिमसल और अक्साई चीन, ये सीधे तौर पर अभी चीन के कब्जे में है, जिसे हम अक्साई चीन का क्षेत्र कहते हैं, वो भारत अब से उसने कब्जा कर लिया उस पर, और लगातार उस पर वो अपने डेवलपमेंट के काम करता रहता है, वो इसने इंफ्रास्ट्रक्चर बना रखा है, और हमारा वहां कम्युनिकेशन लिंक बहुत कमजोर है। तो हमारी जो उत्तर पूर्वी सीमा है वो भी थोड़ी सी कमजोर है, वहां भी हम थोड़ा सा अपने आप को कहीं ना कहीं कमजोर महसूस करते हैं। अब लद्दाख को हमने यूटी बना दिया, यूनियन टेरिटरी बना दिया, वो भी सीधे सीधे केंद्र सरकार के नियंत्रण में आ गया। और बकायदे वहां पर अब भारत सरकार जो है अपना सैन्य इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर सकेगी, और जैसे ही हम अपना मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट बना लेंगे तो कहीं ना कहीं हमारी सुरक्षा काफी पहले की तुलना में मजबूत हो जाएगी और हम चीन के किसी भी चुनौती का जवाब देने की स्थिति में आ जाएंगे। तो ये कुछ बातें मैंने खासकर सुरक्षा की दृष्टि से की है। देखिए, सुरक्षा अलग है और आतंकवाद अलग है, ये बात अलग है कि दोनों पतली डोर से कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए भी हैं, लेकिन जब प्रश्न पूछे जाते हैं तो आपके दिमाग में बहुत स्पष्ट होना चाहिए कि आतंकवाद टेररिज्म क्या है और हमारी जो नेशनल सिक्योरिटी है वह क्या है। दोस्तों, जो दूसरी खबर है वो अखबारों में, न्यूज में भी आपने सुनी होगी, अखबारों में बहुत थोड़ी सी जगह मिली है कि उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 2019 पारित कर दिया गया है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट विधेयक है और उपभोक्ता संरक्षण पर कभी कभी प्रश्न पूछ भी लिए जाते हैं। इसका जो मूल केंद्र है वो तो उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा करना है ही, तो कैसे रक्षा करना। तो उसमें जो सबसे ज्यादा जोर दिया गया है वो इस बात पर कि जैसे आपको कोई, आपने कोई चीज मंगाई और वो चीज खराब निकली, आपने उसके खिलाफ केस दायर कर दिया उपभोक्ता कानून के तहत, तो पता लगा कि उसको उस केस के फैसले में 6 महीने, साल भर, 2 साल, 4 साल कुछ भी लग रहे हैं। तो इसमें इस तरह की व्यवस्था की गई है कि इस तरह के जो केस फाइल होंगे उनका जो निपटारा है वो बहुत जल्दी से जल्दी हो जाए, और इसके लिए बकायदे एक केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण अभिकरण बनाने की बात भी कही गई है, जो विवादों का समाधान, ताकि जल्दी से जल्दी हो सके। तो ये बात आपकी जानकारी में होनी चाहिए। दोस्तों, आज आपको करंट कंटेंट प्रोवाइड किया गया है, बढ़ते तापमान को कैसे शांत करें, तो ये एनवायरमेंट का भी हिस्सा है, टू सम एक्सटेंट साइंस का भी हिस्सा है, इसे आप लोग देख लेंगे। एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, मेल से कुछ स्टूडेंट ने पूछना चाहा है, खासकर राज्यसभा और लोकसभा में विधेयक प्रस्तुत करने के बारे में। मैं अभी बहुत ही सामान्य तरीके से आपको ये बात बताने जा रहा हूं। जिस तरह से प्रश्न पूछे गए हैं, मैं उस प्रश्न को ध्यान में रख करके ही, उन प्रश्नों को ध्यान में रख करके ही बात कर रहा हूं। देखिए, जो विधेयक होता है, कोई भी विधेयक, लोकसभा में भी प्रस्तुत किया जा सकता है, राज्यसभा में भी प्रस्तुत किया जा सकता है। ये सरकार के ऊपर है कि वो किसमें पहले प्रस्तुत कर रही है, तो वो अपने ढंग से उसके बारे में विचार करती है, है ना। उसके बहुत से पॉइंट्स होते हैं, दोनों हाउसेस की अपनी बिजनेस कमेटी होती है, उनको मालूम रहता है कहां कितना प्रेशर है, भी किस पर कहां बहस चल रही है, कहां पेश किया जाना चाहिए, और भी दूसरी राजनीतिक रणनीति का भी हिस्सा होती है, तो सरकार अपने ढंग से निर्णय लेती है, पहली बात। लेकिन याद रखिए कि जो धन विधेयक होता है, मनी बिल जिसे हम कहते हैं, वो सिर्फ लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है, उसे राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता। दूसरी बात कि जैसे अमित शाह जी हैं, तो अमित शाह जी हमारे देश के गृह मंत्री हैं और वो लोकसभा के सदस्य हैं, तो ये अनिवार्य नहीं है कि अमित शाह जी चूंकि लोकसभा के सदस्य हैं तो वो कोई भी बिल लोकसभा में ही पहले प्रस्तुत करेंगे, ऐसा नहीं है। देखिए, जो सभा के जो सदस्य हैं, जैसे राज्यसभा के सदस्य हैं, तो वो तो अपना कुछ भी प्रस्तुत करेंगे, सदस्य अगर गैर सरकारी बिल प्रस्तुत करें तो बढ़ते चले कि वो उसी सदन में करेंगे जिसके वो सदस्य हैं। लोकसभा के सदस्य हैं तो आप लोकसभा में प्रस्तुत करेंगे, लेकिन अगर कोई मंत्री है तो मंत्री तो देश का है ना, ठीक है, वो व्यक्ति के तौर, या सांसद के तौर पर किसी पर्टिकुलर हाउस का मेंबर है, लेकिन वह मूलतः मंत्री है, वो दोनों सदनों में से किसी में भी विधेयक प्रस्तुत कर सकते हैं। लेकिन सामान्यतया फिर अगर मैं बात करूं तो जनरली ये देखा गया है कि जो मंत्री जिस हाउस के मेंबर होते हैं वहीं उस बिल को प्रस्तुत करते हैं, लेकिन ये कोई अनिवार्य नहीं है, संविधान में इसके बारे में कोई बात ऐसी नहीं कही गई। तो मैं ये सामान्य तौर पर आपके दिमाग में एक इम्प्रेशन बनाने के लिए बता रहा हूं। दोस्तों, अब मैं मुख्य विषय पर आता हूं, वो है कि चीन ने अपनी मुद्रा, जो चीन की मुद्रा है युआन, उसका डीवैल्यूएशन कर दिया है, उसका अवमूल्यन कर दिया है। इसे आप थोड़ा सा समझ लीजिए, तो हम भारत के संदर्भ में इसे देखेंगे। देखिए, चीन और अमेरिका के बीच में जबरदस्त रूप से ट्रेड वार चल रही है, आपको बहुत अच्छे से मालूम है, व्यापार युद्ध चल रहा है, और भारत और अमेरिका के बीच में भी इस तरह की थोड़ी बहुत बीच में शुरुआत हो गई थी। तो अब अमेरिका ने क्या किया है कि चीन से जो वस्तुएं आएंगी, कुछ वस्तुओं पर 10% आयात शुल्क लगा दिया, तो यानी कि 10% वो चीजें महंगी हो जाएंगी अमेरिका बाजार में। जब महंगी हो जाएंगी तो चीन के सामान को लोग खरीदना बंद कर देंगे, और इस तरह का सामान लगभग 30,000 करोड़ डॉलर का चीन का सामान अमेरिका में आता है। तो चीन ने इसका जवाब देने के लिए क्या किया, उसने अपनी मुद्रा का 1% अवमूल्यन कर दिया डॉलर के मुकाबले। अब क्या होगा, देखिए, जब आप अपनी मुद्रा का अवमूल्यन कर देते हैं तो आपकी वस्तु अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सस्ती हो जाती है। जैसे मान लीजिए कि सामान्य आंकड़े की मैं बात कर रहा हूं चीन की भाषा में, कि $1 के बदले मान लीजिए 10 युआन था, ठीक है, उसने अपनी मुद्रा का 1% अवमूल्यन कर दिया, ठीक है। तो चलिए हम मोटे तौर पर मान लेते हैं कि $1 के बदले अब 10 पॉइंट, चलिए इसको भी बराबर बराबर कर लीजिए, प्रतिशत पत मत आइए, मान लीजिए कि 11 कर दिया, यानी कि $1 के बदले में 11 युआन। तो अब आप देखिए कि जो डॉलर में अमेरिका का जो सामान अमेरिका का आदमी खरीदेगा तो उसको तो सस्ते में चीज मिल जाएगी ना, क्योंकि चीज की कीमत तो उतनी ही है चीन में, लेकिन उसके डॉलर की कीमत बढ़ गई है, तो अब उसको उतनी ही चीज की कीमत के लिए कम डॉलर देने पड़ेंगे। जब कम डॉलर देने पड़ेंगे तो वहां चीन के सामान की मांग बनी रहेगी, तो एक तरीके से यह भी ट्रेड वार का ही हिस्सा है। अब आप पाएंगे कि भारत का इस पर क्या इंपैक्ट होगा। डेफिनेटली दोस्तों, भारत का भी जो निर्यात है इससे प्रभावित होगा, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारत और चीन में उन चीजों के बारे में बहुत जबरदस्त प्रतिस्पर्धा है, जैसे स्टील, माइनिंग, केमिकल उद्योग, टेक्सटाइल, ये मेटल, ये ऐसी चीजें हैं जहां चीन और भारत एक दूसरे के बहुत ही जबरदस्त कॉम्पिटिटर हैं। अब क्या होगा, चीन की चीजें और सस्ती हो गई, और अगर चीन की चीजें सस्ती हो गई हैं तो भारत की चीजें महंगी होंगी, क्योंकि ज्यों की त्यों है भारत की चीजें, तो लोग भारत की चीजें खरीदना बंद कर देंगे, तो भारत के भी निर्यात व्यापार पर एक प्रकार से यूं कह लीजिए कि इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। तो आपने एक चीज और महसूस किया होगा कि कल ही कल भारत का भी रुपया जबरदस्त रूप से गिरा है, भारत के भी रुपये में कमी आई है। खैर, हम उस पर नहीं जा रहे हैं, उस पर जाने से फिर चीजें थोड़ी सी जटिल हो जाएंगी। तो ये मैंने सामान्य तौर पर आपको बताया कि अगर कोई भी अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करता है, इसे आप सामान्य सिद्धांत के रूप में ले लीजिए, तो उस देश का जो निर्यात है वो बढ़ता है। अगर भारत अपनी मुद्रा का अवमूल्यन कर देगा तो भारत का निर्यात बढ़ जाएगा, ठीक, लेकिन ये इतना सरल भी नहीं। निर्यात तो आपका बढ़ जाएगा, लेकिन आप चीजें आयात भी तो करते हैं, आयात महंगा हो जाएगा, है ना। तो लेकिन ये निश्चित है कि निर्यात में बढ़ोतरी होती है। मैं चीजों को उलझाने से बचने के लिए मुझे लगता है कि अब इस टॉपिक को मुझे यहीं समाप्त कर देना चाहिए। तो दोस्तों, ये मुख्य विषय के बारे में बातें थी। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स आज मैं आपको ढेर सारी प्रोवाइड कर रहा हूं, आप देख लेंगे, अपनी अपनी जरूरत के हिसाब से तैयार कर लेंगे। लेकिन जिन 2-3 टॉपिक पर मैं अभी बात कर रहा हूं, आपको चाहिए कि उनके आप बाकायदे नोट्स बनाते चले जाएं। पहला तो यह है कि जो किया गया वो संवैधानिक दृष्टि से कितना सही है। दूसरा यह है कि इससे आतंकवाद का पर क्या असर पड़ेगा। तीसरा, इससे हमारी जो सुरक्षा व्यवस्था है वो कितनी और कैसे मजबूत होगी। और चौथा, आप ये भी कह सकते हैं कि राष्ट्र के मुख्य धारा में लाने में यह जो निर्णय है सरकार का, कितना सकारात्मक सिद्ध होगा, कितना सही सिद्ध होगा। तो ये 3-4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको ध्यान में रख करके आप बकायदे पॉइंट्स नोट करते चलें। तो ईमेल लिखने वाले सभी मित्रों को दोस्तों मैं धन्यवाद देता हूं, और उन्हीं में से कुछ मित्रों के नाम हैं दिग्विजय राठौर, हिमांशु बानी अलीराजपुर मध्य प्रदेश से, कमलेश कुमार, शुभम शर्मा और सगुना माली, आप सबके प्रति बहुत बहुत आभार। और दोस्तों, इसी के साथ ही अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।